अब हम एक दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन के प्रकार, यानी द टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। इसे क्वेश्चन आता है, सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकारों की विवेचना करें। उत्तर, निश्चय ही सभी प्रकार के आंदोलनों को एक निश्चित श्रेणी में रखना बहुत ही कठिन है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने आंदोलन के उद्देश्यों, संगठन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाए गए माध्यमों, मूल्यों एवं शक्ति आदि जैसे कारकों के आधार मानकर उसे विभिन्न प्रारूपों में वर्गीकृत करने का सफल प्रयास किया है। जैसा कि बिलिर्विस का कहना है कि सामाजिक आंदोलन स्वयं में एक प्रारूप है। जितने भी आंदोलन होते हैं वे किसी न किसी प्रारूप के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी रणनीति, उद्देश्य, जनसहभागिता आदि के आधारों पर सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण किया जा सकता है। जेम्स टर्नर ने जहां सामाजिक आंदोलन के चार स्वरूप बतलाए हैं, वहीं हर्बर्ट ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन को तीन स्वरूपों में विभाजित किया है। जेम्स टर्नर ने सामाजिक आंदोलन को निम्न रूपों में विभाजित किया है, पहला सुधार आंदोलन, दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन, तीसरा प्रतिक्रियावादी आंदोलन, चौथा अभिव्यंजक आंदोलन। पहला सुधार आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलन के अंतर्गत सक्रिय लोग समाज में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना नहीं चाहते, बल्कि उसकी कुछ भागों को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। कोई भी सामाजिक आंदोलन समाज की सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत स्वरूप को स्वीकार करता है और अपने आप को एक आदर्श के इर्द गिर्द केंद्रित करता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि सुधारवादी आंदोलन पीड़ित अथवा शोषित समूहों के समर्थन हेतु उदित होते हैं। उदाहरण के लिए 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में हुए सुधारवादी आंदोलन का उद्देश्य सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह तथा अस्पृश्यता जैसी सामाजिक प्रथाओं का अंत था। क्रांतिकारी आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलन वर्तमान में प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं तथा उसके स्थान पर पूर्णतः नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। इन आंदोलनों के पीछे यह तर्क होता है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से सड़ गल गई है और जब तक इसे नष्ट नहीं किया जाता समाज के लोगों के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। वे वर्तमान प्रतिमानों को चुनौती देते हैं तथा एक नई मूल्य व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं और अधिकांशतः यह देखा जाता है कि आंदोलनकारी सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम हिंसा को अपनाते हैं। उदाहरण जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति तथा नक्सलवादी आंदोलन। तीसरा प्रतिक्रियावादी आंदोलन। यदि वास्तव में देखा जाए तो क्रांतिकारी तथा प्रतिक्रियावादी आंदोलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रतिक्रियावादी आंदोलन रूढ़िवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं जो समाज में होने वाले नवीन परिवर्तनों का विरोध करता है अथवा उसे रोकने का प्रयास करता है। ये आंदोलन पुराने मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण जैसे मुस्लिम धर्म में समय समय पर फतवा जारी करना। चौथा अभिव्यंजात्मक आंदोलन। अभिव्यंजक आंदोलनकारी इस धारणा में विश्वास करते हैं कि समाज में जो कुछ बुराइयां हैं वो बुनियादी हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिव्यंजक आंदोलन में लोग समाज को बदलने का प्रयास नहीं करते बल्कि संगठित होकर समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें सहन करने की शक्ति बटोरते हैं। इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य होता है मानसिक शांति प्राप्त करना, जैसे हिप्पी लोग तथा गायत्री समाज। हर्बर्ट ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन के तीन स्वरूपों का उल्लेख किया है, पहला सामान्य सामाजिक आंदोलन, दूसरा विशिष्ट सामाजिक आंदोलन, तीसरा अभिव्यंजक सामाजिक आंदोलन। पहला सामान्य सामाजिक आंदोलन। इसे आंदोलन की उत्पत्ति सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती है। ये सांस्कृतिक परिवर्तन लोगों की विचारधारा को बदलने का काम करते हैं जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन जाते हैं और ये परिवर्तन मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने को प्रेरित करते हैं। इससे आंदोलनों में नेतृत्व का, उचित मार्गदर्शन का तथा एकता की कमी होती है, जैसे नारी मुक्ति आंदोलन तथा युवा आंदोलन। दूसरा, विशिष्ट आंदोलन। एक विशिष्ट सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आंदोलनकारी किसी निश्चित उद्देश्य को पाने का प्रयत्न करते हैं तथा लक्ष्य पाने की अवधि में यह आंदोलन एक संगठन और संरचना को बना लेता है। ऐसे आंदोलन में एक निश्चित नेतृत्व होता है। आंदोलनकारियों में एकता की भावना होती है। आंदोलन के कुछ दर्शन एवं नियम होते हैं। हर्बर्ट ने विशिष्ट आंदोलन के विकास की 5 अवस्थाएं बतलाई हैं। पहली, उत्तेजना। दूसरी, बंधुत्व की भावना का विकास। तीसरी, मनोबल का विकास। चौथा, वैचारिकी का विकास। पांचवी, आंदोलन की रणनीति और दावपेच। तीसरा, अभिव्यंजक सामाजिक आंदोलन। अभिव्यंजक आंदोलन के संबंध में ब्लूमर और टर्नर दोनों के ही विचार एक समान है। दोनों ही विचारकों का कहना है कि ऐसे आंदोलनकारी सामाजिक संस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते, बल्कि वे सामाजिक बुराइयों को बुनियादी मानते हुए उसे सहने की क्षमता विकसित करते हैं। उपर्युक्त आंदोलनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात मोटे तौर पर इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सुधारात्मक सामाजिक आंदोलन, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, प्रतिरोधात्मक सामाजिक आंदोलन और विरोधात्मक सामाजिक आंदोलन। पहला, सुधारात्मक सामाजिक आंदोलन। संपूर्ण, चूंकि इसका पहले ही हम उल्लेख कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा उसका उल्लेख किया जाएगा। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित न करके सुधारात्मक सामाजिक आंदोलन समाज के किसी एक पक्ष अथवा कुछ भागों में परिवर्तन चाहते हैं। जैसा कि पॉल विल्किंसन का कहना है कि सुधारवादी आंदोलन समाज के मूल्यों और मानकों को संपूर्णतः समाप्त करने की बात नहीं करते। अनावश्यक रूप से इनका उद्देश्य वर्तमान ढांचे में ही बहुत ही छोटा सा आंशिक परिवर्तन करना होता है। योगेंद्र सिंह के अनुसार पुनर्जागरण अथवा सुधार आंदोलन कुछ अपवादों को छोड़कर इस तथ्य पर केंद्रित होते हैं कि परंपरागत विश्व विचारों को कुछ आंशिक दृष्टि से स्वीकार कर चलने दिया जाए। कभी भी आंदोलन समाज की मूलभूत व्यवस्था के साथ समझौता नहीं करते। अब क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन समाज के किसी एक पक्ष में परिवर्तन नहीं करते, बल्कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंक नवीन व्यवस्था स्थापित करते हैं। जैसा कि A.L. बर्ट्रेंड के अनुसार, क्रांतिकारी आंदोलन वे आंदोलन हैं जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हैं और उनके स्थान पर एक उचित समझे जाने वाली सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। M.S.A. राव के अनुसार, सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना होता है। इससे परिवर्तन संपूर्ण तथा आकस्मिक होते हैं। इनमें हिंसा का समावेश भी होता है। प्रतिरोधात्मक आंदोलन। जब समाज के अधिकांश सदस्य यह सोचने लगते हैं कि जो भी समाज में परिवर्तन आ रहा है वह हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है, अथवा इन नवीन सामाजिक परिवर्तनों के कारण परंपरागत सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तब वे लोग संगठित होकर इन परिवर्तनों के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, जिन्हें प्रतिरोधात्मक आंदोलन कहा जाता है। जैसा कि A.L. बर्ट्रेंड का कहना है, प्रतिरोध आंदोलन वे आंदोलन हैं जो इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि लोगों का यह विश्वास है कि जो कुछ भी परिवर्तन आ रहे हैं वो वांछित नहीं है, इनका विरोध किया जाना चाहिए। M.S. राव के अनुसार, प्रतिरोध आंदोलन वे आंदोलन हैं जिनका परिणाम या तो बहुत ही आंशिक परिवर्तन है या यथा स्थितिवाद को बनाए रखने का प्रयत्न है। चौथा, विरोध सामाजिक आंदोलन। विरोध आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्थापित व्यवस्था का विरोध करना होता है। जब हम किसी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए ही कुछ लोग भूख हड़ताल करते हैं। SN Eisendet के अनुसार, विरोध आंदोलन सामान्यतः वे आंदोलन है जिनमें या तो असंतोष की अभिव्यक्ति होती है या कुछ ऐसी मांगे होती हैं जो पूरी नहीं की गई हैं या पूरी करने के लिए मांगों का समावेश किया गया है। ऐसे व्यवहार के जो भी सामूहिक क्रिया के आंदोलन होते हैं वे विरोध आंदोलन कहे जाते हैं। उपर्युक्त सामाजिक आंदोलन आंदोलन के कुछ विशेष प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक आंदोलन होते हैं, जैसे प्रवासी आंदोलन, छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन इत्यादि। जैसा कि सिगमंट का कहना है कि आज सामाजिक जीवन बहुत तेजी से बदल रहा है, अशांति समाज की सामान्य दशा बन गई है और निकट भविष्य में आंदोलनों की संख्या में और अधिक अभिवृद्धि होगी और इसका क्षेत्र और भी व्यापक होगा। लेकिन जब आंदोलन समाज व्यवस्था की एक अंग के रूप में उभरता है तब वह उस व्यवस्था के व्याधिकीय पहलू को प्रकाश में लाता है। आंदोलन के निदानात्मक और उपचारात्मक पक्ष भी होते हैं। निदानात्मक इस अर्थ में कि इसके द्वारा किसी समस्या को प्रकाश में लाया जाता है और उपचारात्मक इस पक्ष में कि उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आज हमारे देश में अनेकों आंदोलन हो रहे हैं जो भारतीय सामाजिक संरचना में व्याप्त विसंगति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार से यह क्वेश्चन समाप्त होता है। इसी चैप्टर में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। उत्तर, चूंकि हम क्रांतिकारी आंदोलन का अर्थ एवं परिभाषा पहले ही प्रश्न में स्पष्ट कर दिए हैं इसलिए यहाँ पर इसका विस्तार रूप से चर्चा नहीं की जाएगी। अब हम थोड़ा सा इसकी विशेषताओं को बताएंगे। पॉल विल्किंसन के अनुसार क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य नए सामाजिक ढांचे की स्थापना और पुराने संबंधों के स्थान पर नए संबंधों की स्थापना करना होता है। लेकिन कुछ क्रांतिकारी आंदोलन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पीछे कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है और इनका उद्देश्य केवल मात्र सामाजिक व्यवस्था को गिराने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करना होता है। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। हर्बर्ट ब्लूमर ने क्रांतिकारी आंदोलन की निम्न विशेषताएं बतलाई हैं। पहली, हर क्रांतिकारी आंदोलन सामाजिक व्यवस्था को पूर्णतः बदलना चाहता है न कि आंशिक। दूसरा, क्रांतिकारी आंदोलन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में स्थापित मानक व मूल्यों, रूढ़ियों और रीति रिवाजों को समाप्त कर एक नए नैतिक मूल्यों और रीति रिवाजों को स्थापित करना चाहता है। तीसरा, क्रांतिकारी आंदोलन समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए वर्तमान संस्थाओं, पुलिस, न्याय व्यवस्था तथा संसद आदि की सहायता नहीं लेते क्योंकि इस आंदोलन के समर्थक इन संस्थाओं को बेकार मानते हैं। चौथा, यह आंदोलन सभी आंदोलनों की तरह जनमत का निर्माण नहीं करते बल्कि लोगों को अपने पक्ष में बदल देते हैं। पांचवा, इन आंदोलनों की उत्पत्ति समाज के शोषित वर्ग से होती है। छठवा, क्रांतिकारी आंदोलन समाज को दो भागों में बांट देते हैं। पहला, सामंत अथवा पूंजीपति वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। दूसरा, शोषित वर्ग अथवा गरीब जनता जिसके पास अपने श्रम के सिवा कुछ नहीं होता। क्रांतिकारी आंदोलन की कुछ और विशेषताएं निम्न है। पहला, क्रांतिकारी आंदोलन का बुनियादी मुहावरा हिंसात्मक होता है। क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय आंदोलनकारी हिंसात्मक गतिविधियों को ही आंदोलन की सफलता के लिए परम आवश्यक मानते हैं, जैसे नक्सलवाड़ी आंदोलन। दूसरा, आमतौर पर ऐसे आंदोलन समाज के एक बहुत बड़े भाग द्वारा नकारा जाता है। ऐसे आंदोलनकारियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है।